आस्तिक अरुणिमा के साथ होटल की लॉबी से बाहर निकला था। उसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था और अरुणिमा का हाथ उसने कसकर थाम रखा था। वो अरुणिमा को अपने साथ वापस ग्रीन माउंटेन वाले घर में ले जा रहा था, जब अचानक पार्किंग में जाते हुए उसके कदम रुक गए। उसने दो बच्चों को भागते हुए देखा और उन्हें उनकी माँ ने भी देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आस्तिक उन दोनों बच्चों को पहचानता था और उनके बाप को तो और भी अच्छी तरह से पहचानता था। मीरा और देव सामने से आ रहे थे। मीरा के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन देव के चेहरे पर एक एरोगेंट लुक था, जैसे कि आस्तिक के वहां होने से खुश नहीं है। वैसे तो आस्तिक को भी कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर उसके मन में इस समय जलन की एक भावना पैदा हो रही थी। सामने ये शख्स उसकी बीवी का एक्स था और इसने अरुणिमा को हमेशा अपने मन और अपनी जिंदगी में जिंदा रखने के लिए अपनी बेटी को अरुणिमा का नाम दिया था। शौर्य और अरुणिमा, मीरा और देव के बच्चे, अब और भी बड़े हो गए थे और अरुणिमा तो और भी ज्यादा क्यूट और खूबसूरत हो गई थी। हालांकि आस्तिक बच्चों को देखकर मुस्कुरा रहा था, यहां तक कि उसकी नज़र स्ट्रॉलर पर आ रहे उस छोटे से बच्चे पर भी गई, जिसे मीरा ने पकड़ा हुआ था। ये शायद उनका तीसरा बच्चा था, आस्तिक ने अंदाज़ा लगाया था, और उसका अंदाज़ा सही भी था। देव मीरा के साथ अरुणिमा के पास आता है। अरुणिमा मुस्कुराते हुए मीरा के गले लग जाती है। उसके बाद उसने छोटे से एक साल के दिव्यांश को गोद में उठा लिया। वो उसे बहुत सारा प्यार कर रही थी। उसे देखकर आस्तिक के चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन तभी देव उसके पास आते हुए अपना हाथ बढ़ाते हुए बोला, कैसे हो? आस्तिक की नज़रें तीखी हो गईं। पिछले एक साल से उसने देव की कई खबरें सुनी थीं, बिजनेस में भी और माफिया में भी। हालांकि आस्तिक ने माफिया की दुनिया छोड़ दी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उसे वहां की खबर नहीं मिलती थी। जब उसने सुना कि स्पाइडर रशियन माफिया छोड़ रहा है, तो वो थोड़ा हैरान जरूर हुआ था, लेकिन उसे तसल्ली भी हुई थी, क्योंकि रशियन माफिया बहुत खतरनाक काम था। अगर देव से जरा भी गलती हो जाती तो वे लोग देव को जान से मार देते और उसके पूरे परिवार को भी। आस्तिक को देव से खास हमदर्दी नहीं थी, लेकिन उसने शौर्य और अरुणिमा को देखा था और उनके तीसरे बच्चे की खबर भी उसे थी। अपने बच्चों को खोने के बाद और अरुणिमा के दूर जाने के बाद आस्तिक नहीं चाहता था कि किसी का परिवार टूटे। इसीलिए जब उसने देव की खबर सुनी तो उसे एक पल के लिए तसल्ली मिली थी। ये काम थोड़ा मुश्किल था। रास्ते के जितने भी सोर्स इंडिया के बाहर थे, उसने वे सब लगा दिए ताकि स्पाइडर को माफिया छोड़ने में कोई परेशानी ना हो। देव को इस बात की खबर नहीं थी, लेकिन उसके माफिया छोड़ने के पीछे एक तरह से आस्तिक का ही हाथ था। उसने इंडिया के बाहर जितने भी माफिया लीडर थे, सबको इसके लिए मदद करने को कहा था, और जब जब वो सामने से मदद मांगता तो कोई उसे मना नहीं कर सकता था। लेकिन ये बात देव नहीं जानता था। उसे लगा कि रशियन माफिया ने उसे अपने आप जाने दिया। देव ने आस्तिक की तरफ हाथ बढ़ा रखा था। आस्तिक का उसे हाथ मिलाने का मन तो नहीं था, लेकिन जब उसने अरुणिमा की तरफ देखा तो उसने इशारे से आस्तिक को हाथ मिलाने का संकेत दिया। आस्तिक को ना चाहते हुए भी देव से हाथ मिलाना पड़ा, लेकिन उन दोनों के हाथों में अभी भी वही शक्ति थी और आंखों में वही एक दूसरे के लिए नापसंदी का एहसास। आस्तिक ने भी अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, मैं ठीक हूं, वैसे तुम क्या कर रहे हो यहां पर? तुमसे परमिशन लेने आया हूं, देव ने सख्ती से कहा। आस्तिक की आंखें और छोटी हो गईं। उसने घूर कर देव को देखा तो देव ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हारी बीवी से शादी करना चाहता हूं, परमिशन दोगे? मीरा ने अपना सिर पकड़ लिया और अरुणिमा की आंखें बड़ी हो गईं। लेकिन देव का हाथ जो आस्तिक के हाथ में था, अगले ही पल आस्तिक ने कसकर दबा दिया। देव ने हल्के दर्द की आवाज के साथ अपना हाथ पीछे कर लिया और उसे झटकते हुए आस्तिक को देखा। आस्तिक ने ठंडी नजरों से कहा, हथियार छोड़ा है, चलाना नहीं भूला। अरुणिमा जल्दी से आस्तिक के पास आई और उसकी बाजू पकड़ते हुए बोली, क्या कर रहे हो आस्तिक? वो मजाक कर रहा है, ये यहां मुझे और तुम्हें इन्वाइट करने आया है। अगले हफ्ते दिव्यांश का पहला जन्मदिन है, वो एक साल का हो जाएगा, इसलिए देव और मीरा हमें इन्वाइट करने आए हैं। मीरा ने जल्दी से देव का हाथ पकड़ा और उसे पीछे करते हुए बोली, मैंने कहा था ना, यहां आकर कोई भी बेवकूफी भरी हरकत मत करना, जिस काम के लिए आए हो वही करना। लेकिन नहीं, मेरी सुनते कहां हो, तीन बच्चों के बाप हो गए हो, लेकिन हरकतें अब भी बच्चों जैसी हैं। जानते हो ना आस्तिक अरुणिमा के लिए कितना पजेसिव है, फिर भी ऐसा बोला। देव ने हल्के से अपना मुंह टेढ़ा कर लिया और चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। मीरा मुस्कुराते हुए आस्तिक और अरुणिमा की तरफ देखती है और कहती है, सॉरी, आपसे देव का ऐसा करने का बिल्कुल इरादा नहीं था, वो बस देखना चाहता था कि क्या तुम आज भी अरुणिमा से उतना ही प्यार करते हो या नहीं। दरअसल हम दोनों यहां आप दोनों को इन्वाइट करने आए हैं, अगले हफ्ते दिव्यांश का पहला जन्मदिन है और मेरे दोनों बच्चे शौर्य और अरुणिमा आपकी बीवी अरुणिमा से बहुत अटैच है, लेकिन सबसे ज्यादा तो मेरा छोटा बेटा दिव्यांश है जो मुझसे ज्यादा अरुणिमा के करीब है। अगर आपके पास थोड़ा सा समय होगा तो क्या आप हमारी इस खुशी में शामिल हो सकते हैं? आस्तिक मना करना चाहता था, लेकिन अरुणिमा ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी अरुणिमा नहीं, छोटी अरुणिमा। उसने नीचे झुककर देखा तो छोटी अरुणिमा उसकी उंगली पकड़कर दाएं बाएं हिलाते हुए बोली, प्लीज अंकल, अरुणिमा आंटी को आने दो ना, वो बहुत अच्छी हैं, हमारे साथ बहुत खेलती हैं, छोटे भाई के साथ भी बहुत खेलती हैं।
उसकी बात सुनकर आस्तिक ने अपनी अरुणिमा की तरफ देखा, जो आंखों से रिक्वेस्ट कर रही थी। आस्तिक ने धीरे से आंखें बंद की और ना चाहते हुए भी सिर हिलाया। उसने कहा, ठीक है, आप लोग अरुणिमा को लेकर जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ जरूरी काम है, इसीलिए मैं पार्टी में आने की कोशिश करूंगा। अरुणिमा खुश हो गई और कसकर आस्तिक के गले लग गई। आस्तिक उसे खुश देखकर मुस्कुराने लगा। अरुणिमा मीरा और उसके परिवार के साथ रवाना हो गई और आस्तिक अपने दोस्त की गाड़ी में बैठकर अपने जरूरी काम में लग गया। उसे अरुणिमा की फिक्र करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो देव के घर में थी और देव की सिक्योरिटी उसने खुद देख रखी थी, जो पूरी तरह सुरक्षित थी। गाड़ी में अरुणिमा दिव्यांश के साथ खेल रही थी, जबकि मीरा उसके साथ बैठी थी। जब अरुणिमा दिव्यांश के साथ होती थी तो मीरा को बिल्कुल भी फिक्र नहीं होती थी। तभी अचानक मीरा ने अरुणिमा से सवाल किया, अरे अरुणिमा, मैं तो भूल ही गई, तुम्हारी उस बहन आरुषि का क्या हुआ? अरुणिमा ने बस उसकी तरफ देखकर इतना कहा, वे चली गई हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए।